दिन भर, तारीख 25 फरवरी दिन रविवार, मैं हूं मोहन लाल शर्मा। रूप की रानी श्रीदेवी ने दुनिया को कहा अलविदा, वो लम्हे, वो चांदनी और अब ये जुदाई का सदमा, याद करेंगे उनके फिल्मी सफर को।
यू कीप डूइंग न्यू थिंग्स, तो मेरे दिमाग में वही था आगे मैं और कितना अच्छा काम करूं। आर्टिस्ट के लिए हद नहीं होती है, यू कैन कीप ग्रोइंग।
श्रीदेवी को पड़ा था कार्डियक अरेस्ट, ये दिल के दौरे से कितना अलग है।
कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि मेरा हार्ट रुक गया, लेकिन मेरी कॉन्शियसनेस अभी भी मेरे शरीर में है। दिल के दौरे का मतलब है कि दिल के एक हिस्से में खून की सप्लाई बंद हो गई, तो उस कारण से दिल का वो हिस्सा मर गया।
कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को दुबई से मुंबई लाने की तैयारी की जा रही है। दुबई में एक शादी समारोह में पहुंची श्रीदेवी का बीती रात हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। उनकी मौत पर सिने और राजनीति जगत की हस्तियों ने दुख जताया है। उनका अंतिम संस्कार कल मुंबई में किया जाएगा। ईरान के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी ने कहा है कि सीरिया में विद्रोहियों के इलाके पूर्वी घुटा पर हमले जारी रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र के संघर्ष विराम की मांग करने वाले प्रस्ताव को पारित होने के बाद भी पूर्वी घुटा पर जमीनी और हवाई हमले जारी हैं। सीरिया पर नजर रख रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि ताजा हमले में 3 लोग मारे गए हैं। वहीं एक विद्रोही गुट ने कई सीरियाई सैनिकों को मारने का दावा किया है। रूस और ईरान सीरिया के राष्ट्रपति बशार अल असद के अहम समर्थक हैं। असद सरकार के सीरिया के कई इलाकों पर फिर से नियंत्रण स्थापित करने में इन देशों की अहम भूमिका रही है। वहीं पूर्वी घुटा में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने अभी तक संघर्ष विराम का कोई संकेत नहीं देखा है। एक नागरिक मोयाद मोहिल्दीन ने बीबीसी से कहा,
I hope it's stop this bloodshed, stop this madness campaign, stop this.
मैं उम्मीद करता हूं कि ये खून खराबा बंद होगा, ये पागलपन बंद होगा। यहां कई दिनों से जो हो रहा है वो बयान के बाहर है। मैं उम्मीद करता हूं कि संघर्ष विराम खत्म होगा। जैसा कि हमने सुना है कि 30 दिन संघर्ष विराम रहेगा, लेकिन अभी तक गोलीबारी बंद नहीं हुई है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने देश के संविधान में संशोधन प्रस्तावित किया है, जिसके पारित होने के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 कार्यकाल की सीमा समाप्त होने के बाद भी देश के राष्ट्रपति बने रहेंगे। चीन की सरकारी समाचार सेवा के मुताबिक संशोधन के तहत उपराष्ट्रपति के कार्यकालों पर लगी सीमा भी हटा दी जाएगी। चीन में फिलहाल राष्ट्रपति अधिकतम 2 कार्यकाल तक ही पद पर रह सकते हैं। बीते 3 दशकों में चीन के नेता 10-10 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अगली पीढ़ी के नेताओं को सत्ता सौंपते रहे हैं। शी जिनपिंग का दूसरा कार्यकाल 2023 में समाप्त हो रहा है। ऐसी चर्चाएं थीं कि वो अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाने के प्रयास कर सकते हैं। बीते साल अक्टूबर में हुए पार्टी के अहम सम्मेलन में उन्होंने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान नहीं किया था। दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में चल रहे शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आज रंगारंग समारोह के साथ समापन हो गया। 16 दिन चले ओलंपिक खेलों की अंक तालिका में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। शीत ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली स्कायर मैरिट जॉर्जेन ने 8वां स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं रूस के खिलाड़ियों को अपने देश के राष्ट्रध्वज के साथ परेड में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। हालांकि शीत खेलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति रूस पर लगा प्रतिबंध हटा लेगी, बशर्ते रूस का कोई और खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में नाकाम न हो। शीत ओलंपिक में हिस्सा ले रहे 2 रूसी एथलीट डोपिंग टेस्ट में नाकाम हो चुके हैं। यरूशलम के ईसाई नेताओं का कहना है कि उन्होंने चर्च ऑफ द होली सेपल्चर को इसराइल की दमनकारी कर और जमीन विनियोग नीति के विरोध में बंद कर दिया है। एक साझा बयान में रोमन कैथोलिक, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और अर्मेनियाई चर्च के नेताओं ने इसराइल पर पवित्र भूमि पर ईसाइयों के खिलाफ अभूतपूर्व अभियान चलाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने चर्च ऑफ होली स्पल्चर को बंद करने की घोषणा की है। बहुत से ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह को यहीं सूली पर चढ़ाया गया था और दफनाया गया था। उन्होंने इसराइल के नए कर नियमों को नस्लीय भेदभाव वाला कहा है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbcehindi.com के अलावा फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। सदमा, नगीना, चांदनी, मिस्टर इंडिया, लम्हे, लाडला, इंग्लिश विंग्लिश और मॉम, ये श्रीदेवी के 50 साल के फिल्मी करियर के वो कुछ नाम हैं जो उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा ताजा रहेंगे। वो यूं ही बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार नहीं कही गई थी। कल देर रात जब भारत सो रहा था तो दुबई से आने वाली एक बुरी खबर ने सभी को हैरानी में डाल दिया। काफी देर तक लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पाए कि श्रीदेवी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। ज्यादातर लोग इसे महज अफवाह बताते रहे, लेकिन कुछ ही देर में बुरी खबर की पुष्टि हो गई और 54 साल की उम्र में श्रीदेवी दुनिया को अलविदा कह गईं। श्रीदेवी के फिल्मी करियर पर नजर डाल रही हैं इंदु पांडे।
एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखें हमेशा कुछ कहती रहती थीं, मानो खामोशी में भी आंखें कुछ कहना चाहती हैं। आज आई एक ऐसी खबर जिसको सुनने के बाद आंखों के सामने सिर्फ वही चेहरा घूमता रहा। हर फिल्म के कई सीन एक फ्लैशबैक की तरह याद आने लगे, जिनकी संवाद अदायगी के कई लोग दीवाने बन गए थे, जिनका नाम था श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन। हम और आप उन्हें जानते हैं श्रीदेवी के नाम से। अगर उनकी फिल्मों की लिस्ट उठाकर देखी जाए तो हर एक फिल्म अपने आप में किसी नगीने से कम नहीं है। एक बार एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि कोई फिल्म किस तरह से सेलेक्ट करती है, तब उनका कहना था,
जैसे चूज कुछ नहीं है, जो मैं माइंड से चूज नहीं करती हूँ, दिल से चूज करती हूँ। When I hear the subject, it should touch my heart. I should feel good about the story. Good about my character and of course the characters around me.
श्रीदेवी ने बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन इनके साथ एक खास बात ये रही कि दूसरे बाल कलाकारों की तरह श्रीदेवी को बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ा और वो सीधे नायिका बन गई। और इस तरह से अपनी खूबसूरती, दिलकश अदाओं और दमदार अभिनय से दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया और उनका स्टारडम हर भाषा की फिल्मों में एक समान रहा। हिंदी दर्शकों में उनकी पहचान बनी फिल्म 16 सावन से। और इसके बाद वो 80 और 90 के दशक में लगातार सक्रिय रही। हर फिल्म में उनका अलग अंदाज उस फिल्म को कुछ खास बना देता था।
For an actor, I feel every step you keep learning, you keep doing new things. तो मेरे दिमाग में वही था, तो आगे मैं और कितना अच्छा काम करूं, ये कभी मेरे दिमाग में नहीं आया तो मैं कहीं और पहुंच गई हूँ। आर्टिस्ट के लिए हद नहीं होती है, यू कैन कीप ग्रोइंग।
अभिनेत्री के रूप में 1976 में उन्होंने तमिल फिल्म मुंदरु मुदीची में काम किया और बॉलीवुड में उन्हें पहचान मिली फिल्म हिम्मत वाला से। इस फिल्म के बाद वो हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार अभिनेत्रियों में शुमार हो गई। फिल्म हिम्मत वाला के इस गाने को भला कौन भूल सकता है। और फिर इसके बाद श्रीदेवी कई सालों तक एक सितारा बनके चमकती रहीं। 1983 में जब फिल्म सदमा आई तो फिल्म क्रिटिक्स ने भी उनकी एक्टिंग का लोहा माना।
ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना।
2013 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा चालबाज और लम्हे के लिए भी उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म इंडस्ट्री में जहां ये कहा जाता है कि अभिनेत्रियों का करियर ज्यादा लंबा नहीं होता, तो वहीं श्रीदेवी ने सिनेमा के लिए लगभग 50 साल काम किया। और 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया, जो कि श्रीदेवी के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मानी जाती है।
हवाई
और 1989 में उनकी फिल्म आई चांदनी, जिससे कि श्रीदेवी को बेशुमार शोहरत मिली और यश चोपड़ा की वो फेवरेट हीरोइनों में शुमार हो गई। जब वो दोबारा इंग्लिश विंग्लिश फिल्म में नजर आई तब उन्होंने यही कहा था,
आई डोंट प्लान एनीथिंग इन माई लाइफ, इंग्लिश विंग्लिश आफ्टर 15 ईयर्स आई नेवर थॉट आई विल डू अ फिल्म अगेन, सो इंग्लिश विंग्लिश जस्ट केम टू माई लाइफ।
और इंग्लिश विंग्लिश का उनका किरदार ऐसा था कि सभी उनकी एक्टिंग देख के चौंक गए। और इस फिल्म का एक डायलॉग कि मर्द खाना बनाए तो कला है, औरत खाना बनाए तो फर्ज है, बहुत चर्चित रहा।
मैं हमेशा सोचती हूँ जो करो वो इंजॉय करके करना चाहिए। बीइंग अ मदर इज अ ग्रेट फीलिंग। वापस जब मैं आई तो बहुत अच्छा लगा।
लेकिन उनका इस दुनिया से चले जाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनकी आखिरी फिल्म मॉम थी।
सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे।
श्रीदेवी का जाना न केवल बॉलीवुड बल्कि उनके फैंस के लिए भी किसी सदमे से कम नहीं है। जैसे ही उनके निधन की खबर लोगों तक पहुंची, मुंबई में उनके घर के सामने उनके प्रशंसकों की भीड़ लग गई। बीबीसी संवाददाता अभिजीत उनके घर के सामने मौजूद थे।
मैं इस वक्त खड़ा हूं मुंबई के जुहू इलाके में ग्रीन एकर सोसाइटी के बाहर, और ये वही सोसाइटी है जहाँ पर मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी इनका घर है। थोड़ी देर बाद उनका पार्थिव है वो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन उनके आने से पहले ही काफी सारे उनके फैंस यहाँ पे उनके सोसाइटी के बाहर खड़े हुए हैं।
सर हमें अफसोस हुआ है, हमें सुबह मालूम हुआ, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, और उनके बारे में तब हमको पता चला भाई श्रीदेवी जी का देहांत हो गया, तो हमको बहुत ज्यादा अफसोस हुआ सर। बस अब क्या बताएं सर आपको,
सुबह के 3 बार वो रोए, 3 बार मैं रोई हूँ। बहुत अच्छी थी श्रीदेवी जैसी कोई हीरोइन नहीं है।
हमारे मम्मी लोग भी सब फैन थे, हम भी फैन हैं उनके। बहुत अच्छी है श्रीदेवी आंटी, हमें पसंद आई है। उनका डांस भी बहुत अच्छा है। जब भी हमारे ब्याह शादी मनती तो हम उनके गाने पे परफॉर्मेंस करते हैं। तो वैसे 6 बजे पता चल गया था सुबह, तो इसलिए वहाँ पे सब लोग रोने लग गए, चाय भी नहीं पिया।
बहुत दुखी मन हुआ, और ये पूरे विश्व के लिए, देश के लिए बहुत मतलब एक तरह से सदमा लगा है।
नागिन देखा, खुदा का देखा, खुदा का जो दिन पिक्चर देखा, आखा दिन माँ बाप का मार खाया, तो क्यों पिक्चर देखने का गया, तो मेरा का बहुत अच्छा लगा। तो उसका जैसा हमको लगता है जे कोई भी पैदा नहीं हुआ।
मैं श्रीदेवी का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनकी पिक्चर जब टीवी पे आती तब मैं देखता हूँ, और मेरे को बहुत ऐसा अफसोस हुआ कि उस सुबह न्यूज सुन के कि श्रीदेवी जी गुजर गई। उनके लिए प्रार्थना करें कि उनके आत्मा को शांति मिले।
जिस शादी के समारोह में हिस्सा लेने के लिए श्रीदेवी दुबई गई थी, पाकिस्तान में टीवी और फिल्म स्टार अदनान सिद्दीकी भी उसी शादी में शरीक हुए थे। श्रीदेवी की आखिरी फिल्म मॉम में उन्होंने उनके पति की भूमिका निभाई थी। बीबीसी उर्दू संवाददाता जावेद सुमरो ने उनसे बात की।
मैं आपको क्या बताऊं साहब, कि मैंने उनके साथ आखिरी दफा स्क्रीन शेयर की है। मैं अब ये सिर्फ कह पाऊंगा कि ये हिस्ट्री बन जाएगी कि ये फिल्म उन्होंने की वो आखिरी फिल्म मॉम थी, और उसके अंदर ये लोग थे जिसके अंदर मेरा नाम भी जोड़ा जाएगा। मैं उनकी डेडिकेशन देखता था काम के वक्त, उनकी एनर्जी देखता था, वो एक कमाल की थी। मतलब आपको मैं क्या बताऊं कि मैं अपने आप को ये सोच लीजिए कि मैं खास तौर से दुबई जो आया था, वो आया था क्योंकि मुझे बोनी साहब ने खास तौर से अपने भांजे की शादी पे बुलाया था।
तो आप शादी में थे उनके साथ, श्रीदेवी जी के साथ और बोनी साहब के साथ?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 4 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई, और मैं कोई रात को 11:30 बजे लैंड किया हूँ दुबई। और मैंने बोनी साहब को फोन किया कि बोनी साहब मैं अभी लैंड किया हूँ, और मुझे रासिल खेमा आने जो 2 घंटे दूर है, तो अभी मैं होटल जाऊंगा, चेंज करूंगा, आपको लगता है कि मुझे आना चाहिए? उन्होंने कहा भाई आइए आप। उन्होंने ये मुझे कहा कि आप आइए क्योंकि श्रीदेवी साहब आपसे मिलना चाहती हैं। जब से फिल्म बनी है, उन्होंने लॉन्च भी हो गया, आपकी शक्ल नहीं देखी, तो एक अच्छी एसोसिएशन होगी। वो 3 घंटे वो दोनों मेरे लिए इंतजार करते रहे साहब, 3 घंटा। मतलब ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है साहब। और जब मैं पहुंचा उधर, तो एक जो चेहरे पे होता है कि भाई इतनी देर कर दी, मुस्कुरा के, वो भी मुस्कुरा के कहा उन्होंने कि इतनी देर कर दी अदनान जी, और जिस तरीके से मिली है मुझे, मुझे लगता था कि वो आखिरी दफा, अब तो वो आखिरी मुलाकात ही रहेगी मेरी
जी। اچھا سری دیوی جی کے کریئر پہ اور ان کے فلموں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ آپ بھی اس وقت یو مسٹ ہیو گرو اپ واچنگ ہر، آپ بھی ان کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہوں گے، تو کیسے دیکھتے ہیں ان کے کریئر کو؟
ایک اتنا بڑا کریئر، اتنے بڑا کینوس ان کی پرفارمنس کا، تو اگر میری یہ تیسری فلم تھی، اگر باقی دیکھا جائے تو پہلے میں نے ہالی ووڈ کیا مائٹی ہارٹ، پھر میں نے یلغار کی، اور پھر یہ موم کی میں، یہ میری تین فلم تھی، اور امیجن کریں یہ ان کی 300th فلم، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا انہوں نے کیا ہوگا. 300 فلمیں جس آدمی نے، جس شخص نے کر لی ہو، میں صدمہ دیکھوں تو ایک ایسی
لاجواب فلم
کہ میں اس کو کمپیئر ہی نہیں کر سکتا ہوں. جب میں مسٹر انڈیا دیکھتا ہوں اور ان کا وہ سیکوینس دیکھتا ہوں جس میں وہ چائنیز بن کر آتی ہے،
جی،
تو وہ ہی دیکھتے رہ جاؤں. پھر میں جب چاندنی دیکھتا ہوں تو پھر وہ لمحے دیکھتا ہوں، مطلب کیا میں کیا پرفارمنسز میں بتاؤں. میری یادیں بھی ہیں، میرا کرش بھی رہی ہیں وہ، اور میں نے ان کے ساتھ کام بھی کر لیا. اس سے زیادہ میں خوش قسمت کیا ہو سکتا ہوں.
پاکستان کے ٹی وی اور فلم اسٹار عدنان صدیقی بتا رہے تھے کہ کس طرح سے وہ آخری موقع تھا جب انہوں نے ان سے ملاقات کی، اور وہ بھی اس شادی میں شریک ہوئے تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شری دیوی دبئی میں جس شادی میں شرکت کر رہی تھی وہیں پر انہیں بھیشن کارڈیک اریسٹ ہوا. دبلی پتلی شری دیوی کو دیکھ کر یہ کہنا کافی مشکل ہے کہ فٹنس کو لے کر سجگ رہنے والی سیلیبریٹی اچانک ایک دن بہت دور چلی جائے گی. لیکن کارڈیک اریسٹ ہوتا کیا ہے؟ یہ انسانی شریر کے لیے اتنا خطرناک ثابت کیوں ہوتا ہے؟ اور ہارٹ فیل ہونے یا دل کا دورہ پڑنے سے کیسے الگ ہے؟ انتر سمجھنے کے لیے ہماری سہیوگی بھومیکا نے بات کی انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر کے کے اگروال سے.
نارملی ہارٹ اٹیک اور کارڈیک اریسٹ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ کارڈیک اریسٹ کا مطلب ہے کہ میرا ہارٹ رک گیا، لیکن انجن ابھی چالو ہے، لیکن میری کانشیسنیس ابھی بھی میرے شریر میں ہے. اور جب وہ کانشیسنیس بھی چلی جائے، یعنی کہ برین کی بھی ڈیتھ ہو جائے، تو اسے کارڈیک ڈیتھ بولتے ہیں. ڈیتھ کا مطلب ہے کہ ہارٹ اور برین دونوں مر گئے. اٹ از لائک اے کار، کار کے اندر میں اگر انجن چل رہا ہے اور کار رک جائے، اسے کارڈیک ہارٹ اٹیک بولتے ہیں، اور اگر انجن بھی بند ہو جائے تو اسے کارڈیک اریسٹ بولتے ہیں.
اور دل کا دورہ کیا ہے؟
دل کے دورے کا مطلب ہے کہ دل کے ایک حصے میں خون کی سپلائی بند ہو گئی، تو اس کارن سے دل کا وہ حصہ مر گیا، کام کرنا بند کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سڑک کے اوپر میں ٹریفک چل رہا ہے، ٹریفک میں کنجیشن ہے، تو ہارن بجاؤ گے، ہارن کو بولتے ہیں انجائنا. کنٹینیوس ہارن بجاؤ گے، اسے بولتے ہیں انسٹیبل انجائنا. ہارن بجاتے بجاتے گاڑی رک گئی، اسے بولتے ہیں ہارٹ اٹیک.
تو کارڈیک اریسٹ زیادہ خطرناک ہے یا دل کا دورہ پڑنا؟ مطلب
نہیں، دل کے دورے پڑنے میں سے ہی کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے. کارڈیک اریسٹ کا مطلب ہو گیا ٹیمپرری ڈیتھ. اگر آپ نے 5 منٹ کے اندر اس ہارٹ کو ریوائیو نہیں کیا، تو پھر کارڈیک ڈیتھ یعنی کہ پرماننٹ ڈیتھ ہو جائے گی.
تو سر، اس کے وجہیں کیا ہو سکتی ہیں کارڈیک اریسٹ کی؟
کارڈیک اریسٹ کی جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وینٹریکولر فیبریلیشن اینڈ وینٹریکولر اریتھمیا. اس کا مطلب ہے کہ میرے ہارٹ کی جو گتی ہے وہ انیمت ہو گئی اور فاسٹ ہو گئی. وہ یوزولی تب ہوتا ہے میرے شریر کے اندر میں ہارٹ کی دھمنیوں میں رکاوٹ ہو اور کوئی ایک رکاوٹ پھٹ جائے، جسے ہم بولتے ہیں پلیک رپچر. پھٹنے سے کیا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے جو آپ کی ہارٹ کی دھمنیاں ہیں، اس ہارٹ کی دھمنی میں جہاں پلیک رپچر ہوگا وہاں پہ کلاٹ آ جائے گا، اس ایریا میں سرکولیشن میں بلڈ نہیں جائے گا، اس کی مسلس کی ڈیتھ ہو جائے گی.
کارڈیک اریسٹ کے کچھ لکشن کیا پہلے سے ہی معلوم چلنے لگتے ہیں کہ
60% لوگوں میں درد ہوتا ہے، 40% لوگوں میں درد نہیں ہوتا. درد نہیں ہوتا تو ان کو ہلکی سی گھٹن محسوس ہو سکتی ہے، بریتھ لیسنیس محسوس ہو سکتی ہے، دباؤ محسوس ہو سکتا ہے، بھاری پن محسوس ہو سکتا ہے. تو چھاتی کے بیچوں بیچ اگر آپ کو دباؤ، بھاری پن، جلن محسوس ہو رہی ہے اور آپ کی عمر 40 سال کے بعد زیادہ ہے، یا ایسیڈیٹی محسوس ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو جانچ کرا لینی چاہیے کہ ہارٹ کی پرابلم تو نہیں ہے.
اچھا، اگر کسی کو کارڈیک اریسٹ آیا ہے تو
کارڈیک اریسٹ کا مطلب ہے کہ دل کی دھڑکن زیرو ہو گئی ہے، وہ آدمی گر جائے گا، اس کی موومنٹس نہیں ہوں گی، اس کا ریسپریشن نہیں ہوگا اور وہ ریسپانس نہیں کرے گا. لیکن ہارٹ اٹیک کے اندر میں آدمی یوزولی بولے گا کہ میرے چھاتی کے بیچوں بیچ میرے کو گھٹن ہو رہی ہے یا جلن ہو رہی ہے یا درد ہو رہا ہے.
چانسز ہوتے ہیں کہ کچھ پرائمرلی ٹریٹمنٹ دے کے،
اگر ہارٹ اٹیک ہے تو 300 mg ایسپرین واٹر سولیبل کی گولی چبانے کو دے دو اور سیدھے ہسپتال لے جاؤ، نیئرسٹ کارڈیک ہسپتال میں لے جاؤ. اور اگر کسی کا کارڈیک اریسٹ ہو گیا ہے تو سی پی آر دو. سی پی آر کا مطلب ہے مرنے کے 10 منٹ کے اندر، ارلیئر دا بیٹر، کم سے کم 10 منٹ تک، لانگر دا بیٹر، 10x10، کم سے کم 100 per minute کی اسپیڈ سے اپنی چھاتی پیچنے کے بدلے مرے ہوئے آدمی کی چھاتی پیچو. مرے ہوئے آدمی کو زمین پہ لٹا کے اگر آپ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے دونوں ہاتھوں سے اس کی چیسٹ کو 2 inches تک 100 per minute کی اسپیڈ سے دباؤ گے، جب تک دباتے رہو جب تک میڈیکل ہیلپ الیکٹرک شاک مشین لے کے نہ آ جائے.
کارڈیک اریسٹ اگر ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے اس کو سمجھا جائے؟ بتا رہے تھے انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کے پرمکھ ڈاکٹر کے اگروال.
दिन भर। शॉर्टवेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 9510, 9540, 11945 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज मेरठ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के कार्यकर्ताओं का एक विशाल सम्मेलन किया। इसे नाम दिया गया राष्ट्रोदय। इसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय भी वहां पर मौजूद थे। वात्सल्य राय सीधे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वात्सल्य, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को यही बताइए कि ये जो आयोजन किया गया, इसमें मोहन भागवत ने जो कार्यकर्ता थे वहां के, क्या संबोधित किया और क्या बातें कही?
जी मोहन जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि विशाल सम्मेलन था, मोहन भागवत ने क्या बोला वो बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 1925 में बना है, उसका दावा था कि ये कार्यक्रम जो आज का अभी से ढाई घंटे पहले खत्म हुआ है, अभी तक का संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा कार्यक्रम था। करीब 2.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। लोगों की गिनती तो हम नहीं कर सकते थे, लेकिन कई सौ एकड़ में वो कार्यक्रम किया गया। और जब हम इसको कवर करने जा रहे थे नोएडा से लेकर मेरठ तक, लगातार हमने बसों के काफिले देखे। दूसरी बात जो वहां पर हो रही थी, जो कई दलों के और दूसरे दलों के लोगों से हमारी बात हुई, इसे आरएसएस का एक शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा था। मोहन भागवत ने यह कहा मंच से, जो कि करीब 60 फुट ऊंचा और 100 बाई 200 फुट का मंच था, उन्होंने ये कहा कि ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। अगर शक्ति होती है तो वो नजर आती है। लेकिन वहां कई पत्रकार भी थे जिनसे हमारी बात हुई, और इसकी टाइमिंग पर सवाल पूछा गया कि आखिर ये इस समय शक्ति दिखाने की जरूरत क्या है, तो बताया गया कि रडार पर 2019 का लोकसभा चुनाव है जो अगले साल होना है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आरएसएस खुद को सांस्कृतिक संगठन कहता है। मंच से मोहन भागवत या दूसरे वक्ताओं ने, कुल 3 लोग बोले, राजनीति पर कोई बात नहीं की, लेकिन संदेश साफ था, हिंदुओं की एकता की बात की गई। और जो संख्या बल दिखाया गया, और मोहन भागवत ने जिसे कहा शक्ति होती है तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती, शक्ति और अनुशासन दो चीजों पर खास तौर पर जोर दिया गया।
जी बहुत बहुत शुक्रिया वात्सल्य राय सीधे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये बताने के लिए कि उस आरएसएस के विशाल सम्मेलन में आज क्या हुआ। बांग्लादेश में सियासत तेज होती जा रही है क्योंकि आम चुनाव ज्यादा दूर नहीं। पड़ोसी होने के नाते भारत भी इन चुनावों का इंतजार कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा उत्सुकता बांग्लादेश के आम लोगों में है भारत और बांग्लादेश के आपसी रिश्तों को लेकर। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव की ढाका से भेजी ये रिपोर्ट सुनिए।
दोपहर का समय है और ढाका के धनमोंडी इलाके में एक 2 कमरे के फ्लैट में हलचल बढ़ी हुई है। 28 साल की चैती रॉय और उनके पति का ढाका से थोड़ी दूर जेशोर जिले में एक छोटा कारखाना है। ये लोग उसी में बनी लकड़ी की कलछियों को ढाका के कई सुपर स्टोर्स में बेचने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में इनका सामान अब कई बड़े सुपर स्टोर्स में खरीदा जा सकता है। पिछले साल ये दोनों कुछ रिश्तेदारों से मिलने भारत आए तो थोड़ी और उम्मीदें जगी। इरादे तो बड़े हैं लेकिन फिलहाल मुमकिन नहीं। चैती रॉय ने अपनी मन की बात बताई।
तो हमारा जो वुडन स्पून का बिजनेस है वो बहुत छोटा है, तो हमारे पास ट्रेड लाइसेंस भी नहीं है, तो उसके लिए हमें जो प्रॉब्लम होती है वो है कि हम ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं ले जा सकेंगे। तो अगर जो छोटा छोटा बिजनेसमैन है उन लोगों के लिए अगर बिजनेस करना आसान होगा, ट्रेड लाइसेंस दे सकते हैं उन लोगों को, तो हमारा बिजनेस एक्सपेंड करना इंडिया में आसान होगा।
पिछले कुछ सालों में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार बढ़ाने की कोशिश हुई है। दोनों ने वीजा नियमों में बदलाव किए हैं ताकि लोगों की आवाजाही बढ़ सके, लेकिन भारत का वीजा मिलने में दिक्कतें कम होती नहीं दिखती। ढाका में इंडियन हाई कमीशन के बाहर सुबह 5 बजे से ही वीजा आवेदकों की लंबी और ना खत्म होने वाली कतारें लग जाती हैं। ऐसी ही एक कतार में हमारी मुलाकात बांग्लादेश के राष्ट्रीय फुटबॉल कोच अब्दुल रजाक साहब से हुई।
हम भारत से बहुत प्यार करते हैं, दोनों देशों में दोस्ती भी रही है, लेकिन वीजा मिलना इतना मुश्किल है कि मत पूछिए। दोनों सरकारों को ये बताने की जरूरत है कि इस मुश्किल का हल निकालना होगा, हमें वीजा की आजादी चाहिए।
1971 में बांग्लादेश के बनने में भारत की भूमिका अहम थी, पर उसके बाद से वहां राजनीति 2 बड़ी पार्टियों और सेना के बीच करवट लेती रही है। भारत से रिश्तों में उतार चढ़ाव होता रहा। वैसे पिछले कुछ वर्षों में रिश्ते बेहतर हुए हैं और अब वहां आम चुनाव भी करीब है। हिंसा के बीच हुए 2014 के चुनाव का विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बहिष्कार किया था। इधर आवामी लीग की मौजूदा शेख हसीना सरकार को भारत का करीबी बताया जाता है। शायद यही वजह है कि ये चुनाव भी भारत के लिए उतने ही अहम होंगे। हालांकि ढाका की सड़कों पर आम लोगों की राय बेबाक है। शहर के पुराने इलाके में एक चाय की दुकान के बाहर हमें नूर इस्लाम मिले।
भारत के साथ हम हमेशा अच्छे संबंध चाहते हैं और भारत की इज्जत करते रहे हैं, लेकिन संबंध आम लोगों के बीच होना चाहिए, ना कि सिर्फ सरकारों के बीच। भारत को यहाँ के लोगों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की जरूरत है, ना कि सरकार या किसी राजनीतिक दल की तरफ।
बांग्लादेश में सियासी माहौल गर्म है। चुनाव कैसे होंगे, कौन लड़ेगा कौन नहीं, इस पर चर्चाएं जारी हैं। मगर आम लोगों को इंतजार चुनावी हार जीत से ज्यादा सहूलियत का है। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी ढाका।
नितिन श्रीवास्तव की विशेष रिपोर्ट ढाका से आप सुन रहे थे। और अब कार्यक्रम में हम बात करेंगे खेल समाचारों की। आदेश कुमार गुप्त आज रविवार है, मौजूद हैं स्टूडियो में। आदेश, कहां से शुरू कर रहे हैं खेल समाचार?
जी, बैडमिंटन की दुनिया से आखिरकार पारुपल्ली कश्यप की किस्मत के सितारे बदले और उन्होंने ऑस्ट्रियन ओपन अपने नाम किया। दूसरी वरीयता हासिल पारुपल्ली कश्यप ने फाइनल मुकाबले में पांचवी वरीयता हासिल इस्तोनिया के राहुल मस्ट को 37 मिनट में 21-18 1-4 से हराया। पारुपल्ली कश्यप ने साल 2014 में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद वो चोट और खराब फिटनेस का शिकार रहे। वो पिछले साल अमरीकी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में भी पहुंचे, जहां उन्हें भारत के ही एचएस पढ़ने के हाथों हार का सामना करना पड़ा। उधर स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में आज भारत के समीर वर्मा का मुकाबला डेनमार्क के यानो योर्गेनसन से होगा। दूसरी वरीयता हासिल समीर वर्मा ने सेमीफाइनल में थाईलैंड के कांताफोन वांगचारोएन को 1:15 के संघर्ष के बाद 21-14 11-21 21-12 से मात दी। उधर मेजबान न्यूजीलैंड ने हैमिल्टन में खेले गए पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को केवल 4 गेंद बाकी रहते 3 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने जीत के लिए 285 रनों का लक्ष्य अनुभवी और सदाबहार बल्लेबाज रॉस टेलर के 113, टॉम लेथम के 79 और मिचेल सेंटनर के नाबाद 45 रनों की मदद से 49.2 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर इंग्लैंड ने जॉस बटलर के 79 और जो रूट के 71 और उनके अलावा जेसन रॉय के 49 रनों की मदद से निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 284 रन बनाए। इसके साथ ही 5 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में न्यूजीलैंड ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। वहीं बीसीसीआई ने अगले महीने 6 मार्च से श्रीलंका में शुरू होने वाली त्रिकोणीय 2020 सीरीज के लिए भारतीय टीम का आज ऐलान कर दिया। भारत की कमान रोहित शर्मा को सौंपी गई है और शिखर धवन को उपकप्तान बनाया गया है। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव को आराम दिया गया है, जबकि वाशिंगटन सुंदर, विजय शंकर, मोहम्मद उसके अलावा दीपक हुडा और ऋषभ पंत को टीम में जगह दी गई है।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त।
माफी के साथ चाहूंगा, मोहम्मद सिराज।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त। और इससे पहले कि कार्यक्रम में हम विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को दुबई से मुंबई लाने की तैयारी की जा रही है। दुबई में एक शादी समारोह में पहुंची श्रीदेवी का बीती रात हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। ईरान के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी ने कहा है कि सीरिया में विद्रोहियों के इलाके पूर्वी घुटा पर हमले जारी रहेंगे। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने देश के संविधान में संशोधन प्रस्तावित किया है, जिसके पारित होने के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 कार्यकाल की सीमा समाप्त होने के बाद भी राष्ट्रपति पद पर बने रह सकेंगे। दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में चल रहे शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आज रंगारंग समारोह के साथ समापन हो गया। 16 दिन चले ओलंपिक खेलों की अंक तालिका में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर के इस अंक में आज बस इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। लेकिन आपको बता दें कि श्रीदेवी से जुड़े सारे समाचार हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, इन्हें पढ़ने के लिए आइए। मोहनलाल शर्मा को समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।